ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा।
कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता
और मैं अमित,
हमारा प्यार भरा नमस्कार।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पवित्र बाइबल का संदेश, तो चलिए
इससे पहले परमेश्वर का वचन सुने हम ये गीत सुनते हैं।
आज की रात मोहब्बत का कमाला, आज की रात मोहब्बत का कमाला, आज की रात यहोवा जला है, आज की रात मोहब्बत कमाला। सजदे करते आज की रात गुजर जाए, सजदे करते आज की रात गुजर जाए, सजदे आज की रात नफरत को जवाला है, आज की रात मोहब्बत का कमाला।
Sun, 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 sun.
चरागों को जलाए चरागों को करे आज चरागों को जलाए दिल को आज की रात मसीहा वसाला आज की मोहब्बत कमाला
रक्तदान। जरूरत पड़ने पर एक मनुष्य का रक्त दूसरे मनुष्य को चढ़ाया जा सकता है, लेकिन किसी भी मनुष्य को रक्त चढ़ाने से पूर्व उसकी तथा रक्त दाता के खून की जांच कर ब्लड ग्रुप का पता लगाया जाता है। यूं तो दिखने में सभी के खून एक समान लाल दिखाई देते हैं, पर वे एक जैसे होते नहीं हैं। एंटीजन के अणुओं की विभिन्नता की वजह से लोगों का रक्त अलग अलग होता है। एंटीजन के अणु एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अब से कोई 100 साल पहले कार्ल स्टीवर ने ए तथा बी दो एंटीजनों का पता लगाया था। इन एंटीजोनल के अनुसार ब्लड ग्रुप तय किए गए, जैसे ए एंटीजन वाले का रक्त ए समूह, बी एंटीजन वाले का रक्त बी समूह तय किया गया। इसके कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि कुछ व्यक्तियों के रक्त में ये दोनों एंटीजन एक साथ हो सकते हैं। ऐसे समूह को ए बी नाम दिया गया। मजे की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जिनके रक्त में ना तो ए एंटीजन पाया गया और ना बी। वैज्ञानिकों ने ऐसे रक्त समूह को ओ नाम दिया। इस प्रकार ब्लड ग्रुप चार भागों में बांटे गए, ए बी, ए बी और ओ। जिस व्यक्ति का खून लेना है और जिसे खून देना है, दोनों का रक्त समूह एक होना चाहिए। इसका पता लगाने के लिए प्रयोगशाला में जांच की जाती है और यदि वे मेल खाते हैं तभी रक्त का आदान प्रदान संभव हो सकता है। बेमेल रक्त चढ़ाने का मतलब है व्यक्ति की मौत। एक परिवार के प्रत्येक सदस्य का रक्त समूह एक दूसरे से भिन्न हो सकता है, जबकि दो भिन्न जाति धर्म के लोगों का खून एक ग्रुप का हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार यह सुनिश्चित किया गया है कि जिस वर्ग समूह के व्यक्ति का रक्त किस वर्ग समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक रक्त समूह वाला व्यक्ति ए तथा ए बी रक्त समूह वाले को रक्तदान कर सकता है, किंतु ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति केवल ए बी रक्त समूह वाले को ही अपना रक्त दे सकता है। ओ ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी ओ ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी, ए बी और ओ सभी रक्त समूहों को रक्तदान कर सकता है। इसी प्रकार ए बी रक्त समूह को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि यह किसी भी रक्त समूह का रक्त ग्रहण कर सकता है। यानी ए बी समूह वाला व्यक्ति ए बी, ए बी तथा ओ किसी से भी रक्त ले सकता है, जबकि ए समूह वाले तथा ए से बी समूह वाले, बी तथा ओ से तथा ओ समूह वाले से रक्त प्राप्त कर सकते हैं। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि किसी भी रक्त समूह का रक्त ना तो दूसरे से अच्छा होता है और ना बुरा। रक्त समूह में बंटवारे का रक्त के गुण दोष से कोई वास्ता नहीं होता। बाजार में यानी ब्लड बैंकों में हर रक्त समूह के रक्त की बोतलें तैयार मिलती हैं, लेकिन आमतौर पर वे पेशेवर रक्तदाताओं की ही होती हैं। बेहतर होगा कि घर के किसी सदस्य या रिश्तेदार का रक्त समूह मेल खा जाए तो उसी का रक्त चढ़ाना चाहिए। रक्त चढ़ाने से पूर्व इस बात की जांच का प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए कि रक्तदाता एड्स, पीलिया आदि रोगों से संक्रमित नहीं है। यदि हम विश्व स्तर पर रक्त समूह की बात करें तो सबसे ज्यादा ओ ग्रुप पाया जाता है जो 46% है, रक्त समूह से ही जुड़ा है आरएच फैक्टर का मुद्दा। यह लाल कण कोशिकाओं में कुछ पदार्थों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति से होता है। यूं तो रेसस तत्व कई होते हैं किंतु डी तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। सामान्य यह तत्व लोगों में उपस्थित रहता है, इसे आरएच प्लस कहते हैं, लेकिन जिनमें यह रेसस फैक्टर नहीं होता उनके रक्त में आरएच फैक्टर को प्रभावित यानी आरएच माना जाता है। रक्त समूह के साथ साथ आरएच फैक्टर की भी जांच करनी चाहिए। आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति का रक्त चढ़ाने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तो श्रोताओं, आपने सुना कि किस प्रकार हम रक्त से जीवन भी बचा सकते हैं और गलत समूह वाले रक्त से मृत्यु भी दे सकते हैं। श्रोताओं, आज की इस जानकारी से आप अपने लिए सावधानी बरतेंगे तथा ज्ञान प्राप्त करेंगे। इस उम्मीद के साथ वेल्डन चरण को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है
वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया।
आपके लिए परमेश्वर की महान योजना। प्रिय मित्रों, प्रभु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, आज चर्चा करेंगे कि आपके लिए परमेश्वर की एक महान योजना है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए योजना बनाता है, बशर्ते कि वो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे, उसकी आज्ञाओं का पालन करे, उसकी आवाज़ को सुने या उसका शिष्य बने। मित्रों, अपने बच्चों के लिए योजना बनाने में परमेश्वर को सुख मिलता है। कोई भी सांसारिक पिता अपने बच्चों के लिए योजना बनाने में उतना आनंद नहीं पाता जितना परमेश्वर अपने बच्चों के लिए योजना बनाने में पाता है। वो नहीं चाहता कि आपके जीवन के सुंदर देश का कोई भी भाग आप खो दे। उसकी योजनाएं आशीष, आनंद, चौंकाने वाली अद्भुत बातें की विस्तृत जानकारी से भरी है। दाऊद कहता है भजन संहिता 40:5 में, जो आश्चर्यकर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है। मैं तो चाहता हूं कि खोल कर उसकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए स्थिर नहीं है। यदि आपने उसकी योजनाएं जो आपके लिए है उनमें से एक भाग भी खो दिया है तो आज आप यहां भी हैं, वो वहां से फिर से शुरू करने के लिए तत्पर है। आप अभी जहां हैं वहां से सबसे अच्छे कर्म में उसकी योजना को अपना लें, जैसे एक पिता ने अपने बच्चों की बदलती जरूरतों के साथ अपनी योजनाओं को अपना लेता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवन की सच्चाई के साथ समित करता रहता है ताकि आप एक गलती करें तो ये आपके प्रति परमेश्वर के संपूर्ण उद्देश्य को नष्ट नहीं कर देता। मेरे दोस्तों, ढांढस बांधिए, परमेश्वर ने आपके लिए अपनी योजना को रोक नहीं दिया है। वो तो आपकी आवश्यकता के अनुसार तुरंत उसे अपना लेता है। कभी भी निराश नहीं हो। कई बार आप अनुभव करेंगे कि आप परमेश्वर के मार्गदर्शन को खोजने में असफल हो गए या उसकी इच्छा को सही तरह से समझने में असफल हुए। दुख मनाने में एक लंबा समय व्यतीत ना करें, परमेश्वर से क्षमा मांगे और अपने जीवन सेवकाई में आगे बढ़ जाए, ठीक जिस प्रकार दाऊद ने किया। कोई भी गलती कर सकता है, कोई भी अपने निर्णय या क्रियाकलाप में परमेश्वर की इच्छा को चूक सकता है, परंतु कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर कितना प्रेमी, दयालु, समझदार है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरियों पर दया करता है, क्योंकि वो हमारी सृष्टि जानता है, उसको स्मरण रखता है कि मनुष्य क्या है, मिट्टी का है। भजन संहिता 103:13-14, परमेश्वर आपकी असफलताओं, गलतियों को रद्द कर सकता है। परमेश्वर ने योएल नबी के द्वारा कहा कि जिन वर्षों की उपज टिड्डियों ने खा ली थी, मैं उसे तुम्हें पूरी भर दूंगा। कोई भी भूल इतनी भयानक नहीं है, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में फिर से नया शुरू करके सब कुछ उपयोगी बना सकता है। ऐसा कहा जाता है कि जब एक फारसी जुला एक गलीचा बनाता है, तो वो कर्जे के एक ओर से खड़े होकर अन छोटे लड़कों को जो दूसरी ओर उसी गलीचे पर काम कर रहे होते हैं, उन्हें क्या करता है, उन्हें निर्देश देता है। यदि कोई लड़का बनाते समय कुछ भारी गलती कर बैठता है, तो सच्चा महान जुराहा उसकी गलती में एक ऐसा सुंदर नमूना बना देता है कि दूसरे कभी भी उसकी गलती को नहीं पकड़ पाते। परमेश्वर इस महान जुराहे से कहीं अधिक महान है। परमेश्वर किसी भी समर्पित जीवन को ले सकता है, हमारे जीवन को बहुत सुंदर उपयोगी रूप में बन सकता है। यिर्मयाह द्वारा इज़राइल को दिया गया परमेश्वर का यह वचन ये था कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, योजनाएं तुम्हें उन्नत करने, योजनाएं तुम्हें एक आसार भविष्य देने के लिए है। यिर्मयाह 29:11। ध्यान दीजिए, योजनाएं बहुवचन में है, हालांकि मूलतः ये प्रतिज्ञा इज़राइल को दी गई थी। इसमें आपके मेरे लिए भी अधिक सच्चाई भरी है। ये परमेश्वर की विशेषता है, वो सभी के लिए लगातार योजना बनाने वाला परमेश्वर है। सभी के लिए उसकी कई योजनाएं हैं, वो न केवल आपके आत्मिक कल्याण के लिए योजना बनाता है, परंतु आपके पारिवारिक जीवन, आपके कार्य क्षेत्र, आपके आर्थिक भविष्य के लिए भी सचमुच आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए। क्या फिलिपी 4:19 का यही अर्थ नहीं है, मेरा परमेश्वर आपकी प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर लगातार आपके विषय में सोचता रहता है, आपके लिए योजना बनाता रहता है, आपको उसके मार्गदर्शन के सहायता की लगातार जरूरत पड़ती है मित्रों, ताकि आप उसकी सब योजनाओं से पूरा पूरा लाभ और आशीषें पा सके। अपने जीवन की अधिकतम निवेश में पक्का होने के लिए परमेश्वर की केवल अगुवाई ही एकमात्र रास्ता है। परमेश्वर अनंत योजना ही प्रबल होगी, वो आपके लिए अपनी योजनाएं पूरी संसार के लिए अपनी बनाई योजनाओं के प्रकार में बनाता है। समय और अनंत काल के लिए अपनी योजनाओं के प्रकाश में बनाता है। परमेश्वर की योजनाएं जो आपके लिए है, उनका पूर्णतः इस्तेमाल नहीं हो पाता। कभी कभी हम असफल हो जाते हैं। अकेले परमेश्वर देखता है कि आपके लिए, आपके परिवार, ईश्वर के लोग, संसार के लिए क्या उत्तम है। जब आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, तो आपके जीवन कितना असरकारी हो सकता है, इस बात को आप कितना थोड़ा समझते हैं। मेरे मित्रों, जब आत्मा में फिलिप्पुस को निर्देश दिया गया कि वो उस बड़ी आत्मा जागृति को छोड़कर जाए जिसे परमेश्वर ने उसके द्वारा सामरिया में भेजा गया था, तो ये तर्कसंगत नहीं दिखाई पड़ा। परमेश्वर उसके सामर्थ के साथ सामरिया में इस्तेमाल कर रहा था। भीड़ की भीड़ उसे सुनने के लिए जमा हो रही थी। वे प्रभु की ओर फिर रहे थे, बपतिस्मा ले रहे थे। परमेश्वर ने फिलिप्पुस को बड़े आशीष कर्म करने के लिए, बीमारों को चंगा करने, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए उपयोग में लाया। सारा शहर बहुत उत्तेजक हो गया और पिंतेकोस्त के बाद इस पहली आत्मिक जागृति में बहुत आनंद था। परमेश्वर की आत्मा का चलन इतना महान था कि प्रेरित के समूह ने यरूशलेम से पतरस और यूहन्ना को सहायता के लिए भेजा और बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भर गए। तब पतरस, यूहन्ना फिलिप्पुस के हाथ में काम छोड़कर यरूशलेम लौट आए। अब अचानक पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस को मरुस्थल के रास्ते पर, जो गाजा को जाता, जाने के लिए कहा। उसे 35 मील दूर यरूशलेम की ओर और उसके बाद 60 मील मरुस्थलम के रास्ते पर गाजा की ओर जाना पड़ा, जो मिस्र की सीमा पर फलस्तीन का दक्षिणी शहर है। मानवीय तौर पर सोचे तो इसमें कोई समझदारी नहीं दिखती, परंतु फिलिप्पुस ने आज्ञा को माना। इथियोपिया देश का जो खोजा फिलिप्पुस के द्वारा उस धूल भरी मार्ग में रास्ते पर मिला, परमेश्वर ने उसके द्वारा सुसमाचार के लिए अफ्रीका को खोल दिया। इस राज के कोषाध्यक्ष के जीवन परिवर्तन के द्वारा सद अधिक लोग यीशु में आए, जितने फिलिप्पुस की सेवकाई के बचे कार में भी नहीं आए। मेरे दोस्त, इस प्रकार परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करता है। कभी कभी वो हमें काफ़ी दूर भेजता है, हम समझ नहीं पाते परमेश्वर क्यों हमें यहाँ भेज रहा है, बल्कि उसकी एक योजना होती है। योना ने परमेश्वर से दूर भाग जाने की कोशिश की और पाया कि वो ऐसा नहीं कर सका। इजबेल ने परमेश्वर की और नबियों को नकारने की कोशिश की, परंतु वो अपना नाम एक शापित शब्द के रूप में युगों के लिए छोड़ गई। कोई भी परमेश्वर की इच्छा का सामना करने में सफल नहीं हो सकता। परमेश्वर की योजना तो प्रबल होती है। जब आप उसकी योजना में समाएंगे तो आप सफल होंगे। भजन संहिता 33:10-11 कहता है, परमेश्वर यानी यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है और देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहती है, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बली रहती है। मेरे दोस्तों, बाइबल कहती है, सेनाओं के यहोवा ने शपथ खाई है कि निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा, जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है। कौन उसको टाल सकता है? उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है? यशायाह 14:24-27 में परमेश्वर के वचन हैं, मेरी युक्ति स्थिर रहेगी, मैं अपनी इच्छा पूरी करूँगा, मैंने ये बात कही है उसे पूरी करूँगा, मैंने ये विचार बांधा है उसे सफल भी करूँगा। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर के पास आपके लिए एक महान योजना है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको आशीष दे, जो आशीष परमेश्वर ने यूसुफ को दिया था। यूसुफ को परमेश्वर ने अपने घर से निकाला, उसे दूर भेजा, उसे वो कैद में था, वो दुखी था, लेकिन परमेश्वर जो है यूसुफ के साथ था। एक बड़ी योजना यूसुफ के साथ थी। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर का साथ आपकी ओर है? बाइबल कहती है भजन संहिता 118:6-7 में, यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, यह मेरे और मेरे सहायकों में है, मैं अपनी बैरियों पर दृष्टि रखकर संतुष्ट रहूंगा। यशया ने परमेश्वर के दुश्मनों से कहा, तुम युक्ति करो तो करो परंतु वो निष्फल हो जाएगी, तुम कुछ भी कहो परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आपके संग है, परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर सबके संग है। आइए हम अपने जीवन परमेश्वर को दे और सहायता के लिए पुकारे और कहे, परमेश्वर अपनी महान योजना को मेरे जीवन में पूरा कर। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आज अपने पापी हृदय पापी मन को लेकर तेरे पास आते, खुदावन हमारे विचारों को पकड़, हमें आशीष दे, हमारे जीवन को बदल, खुदावन अपनी महान योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अगर आपके पास कोई प्रश्न है, अगर आप दुखी हैं, बीमार हैं और लाचार हैं, मुझे फ़ोन करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर आई मेल नोट करें, मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल नंबर है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।
श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए, हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है,
कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया।
पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया।
और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता
और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए,
प्रभु आपको आशीष दे।